کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام دارو الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاتن، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان اور مجیب مفتی محمد جمیل اتاری صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ،
کیسے مزاج کرامی آپ؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ کچھ ہمارے پاس سے ویڈیو سوالات ہیں، بڑھتے ہیں ناظرین کے ان سوالات کی طرف۔
میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ اگر نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
جی، بہت سے لوگوں کی گویا کہ انہوں نے ترجمانی کی ہے، کئی افراد وتر عام طور پر اگر دعائے قنوت بھول جائیں تو رکوع میں چلے جائیں، کیا کرنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتر کی نماز واجب ہے، اور وتر کی اس نماز کے اندر تیسری رکعت میں جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سورت بھی ملا لیتے ہیں، تو اب رکوع میں جانے سے پہلے ہم پر دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، لیکن اس دعائے قنوت سے پہلے تکبیر قنوت کہنا بھی واجب ہے، یعنی ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، اب اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، اور یہ ہاتھوں کو دونوں کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے، اور تکبیر کہنا واجب ہے۔ تو دعائے قنوت کی تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔ اب اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دو واجب اس نے چھوڑ دیے۔ ایک واجب دعائے قنوت کے سے پہلے جو تکبیر قنوت ہے وہ چھوٹی، اور ساتھ ہی ساتھ دعائے قنوت بھی چھوٹ گئی۔ اب وہ رکوع میں ہے تو رکوع میں پہنچنے کے بعد اب واپسی قیام کی طرف نہیں آنا، بلکہ اب اس نماز کو کنٹینیو رکھنا ہے، یعنی جو رکوع سے اب اٹھیں گے، قومہ کریں گے، پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، اور التحیات ادا کرنے کے بعد پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ سجدہ سہو کرنے سے یہ نماز درست ہو جائے گی،
ٹھیک ہے۔
اور اگر کسی ایک نماز میں اگر ایک سے زائد واجب بھی بھولے سے رہ جائیں تو ایک ہی دفعہ جو دو سجدے کرنے کا عمل ہوتا ہے سجدہ سہو کا، وہ کفایت کرتا ہے۔
یعنی تکبیر قنوت بھی اس میں رہ گئی،
جی،
اور دعائے قنوت بھی رہ گئی، تو دو واجب چھوٹے،
دو واجب چھوٹے۔ تو آخر میں جو ایک مرتبہ جو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، یعنی پورا سجدہ سہو یہ ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد سیدھی طرف سلام پھیریں گے اور دو سجدے کریں گے،
ٹھیک ہے،
یہ دو سجدوں پر مشتمل جو عمل ہے اس کو ہم سجدہ سہو کرنا کہتے ہیں،
صحیح۔
تو اگر نماز کے اندر دو تین چار واجبات بھی اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تو اس صورت میں بھی ایک دفعہ یہ سجدہ سہو کرنے کا عمل کفایت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ایک واجب پہ ایک دفعہ سجدہ سہو کیے کہ دو سجدے کیے، دو واجب چھوٹے تو ہمیں دو سجدے اور سجدہ سہو کے کرنے ہوں گے، ایسا نہیں،
ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب رکوع میں یاد آ گیا ہے کہ دعائے قنوت نہیں پڑھی، اچھا واپسی آنا چاہیے یا نہیں، یہ تو آپ بتائیں گے، لیکن اگر نہیں آنا بالفرض پھر بھی کوئی آ گیا تو کیا ہوگا؟
اب چونکہ انسان جب تیسری رکعت کے دعائے قنوت کو بھول کر وہ رکوع میں چلا گیا تو رکوع فرض ہے اور دعائے قنوت پڑھنا فرض نہیں ہے، تو ایک فرض عمل کو چھوڑ کر واجب کی طرف اب واپس آنے کی اجازت نہیں ہے، آدمی گناہگار ہوگا، ناجائز عمل کا مرتکب ہوگا۔ اب اسے اپنی نماز کو آگے کنٹینیو رکھنا ہے اور سجدہ سہو کر لینا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی واپس آ جاتا ہے تو اس کا یہ واپس آنے کا عمل ناجائز اور گناہ ہوا، اور اب یہ جو اس نے ایک عمل کیا ہے وہ ناجائز کیا ہے، تو اس پہ واجب ہے کہ اب نماز کو یوں ہی کنٹینیو رکھے، लेकिन वापस आने की वजह से इसने एक तरह का वाजिब छोड़ दिया,
ठीक।
और ये अगर जानबूझ के छोड़ा है तो अब इस नमाज को सजदा सहव कर लेने के बाद भी ये नमाज का जो नक्स है वो ख़त्म नहीं होगा। अब इस नमाज को बाद में सजदा सहव वगैरह कर लेने के बाद भी इस नमाज को दोबारा से पढ़ना होगा, यानी
दोबारा से पढ़ना
वाजिब होगा,
ज्यादा वाजिब।
लेकिन सजदा सहव उस नमाज में करेगा क्योंकि एक वाजिब छूट गया था, तो उस बिना पे वो सजदा सहव भी करेगा। लेकिन सजदा सहव करने से जो कस्तन वाजिब छोड़ा है, उस कस्तन वाजिब छोड़ने की वजह से जो नमाज में नक्स आता है वो नक्स सजदा सहव से दूर नहीं होगा। अब इस नमाज को दोबारा से फिर पढ़ना होगा,
ठीक है। बहुत से लोग जब वितर जमात में जमात के साथ पढ़ रहे होते हैं रमज़ान में, तो अब इमाम से अगर यही मिस्टेक हो जाए भूल कर, तो आधे लोग तो बिल्कुल वहीं खड़े रहेंगे और वो जुकमा ही देंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और कोई बीच में बोल भी देता है दुआ कनूत वो डायरेक्ट वो भी कलिमात, इस तरह के भी लोग सवालत करते हैं। अब एक भूल गया इमाम, तो अब उसी भूल के पीछे खुद भी अल्लाह अकबर करके रुकू में जाए।
अब इसमें यही है कि जब इमाम साहब रुकू में चले गए और वो दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए और रुकू में चले गए, तो अब इमाम को वापस आना क़याम की तरफ ये नाजायज है। सिर्फ इमाम ही को नहीं, जो अकेले नमाज पढ़ रहा है उसके लिए भी यही हुक्म है। अब इमाम को लुकमा देना, याद दिलाना,
ये और ख़तरनाक है यहाँ पे,
कि अब वापसी वो क़याम की तरफ आए और दुआए कुनूत पढ़ें, तो ये एक वाजिब जब इमाम के लिए अब ये लाजिम हो गया था कि अब वो नमाज को कंटिन्यू करे, तो अब ये जो लुकमा देना है दुआए कुनूत के लिए पीछे आने का, ये एक नाजायज काम पर इमाम को वापस बुलाना हुआ। तो अब ये लुकमा देना बेमहल है और बेमहल नमाज में लुकमा देने से नमाज लुकमा देने वाले की टूट जाती है। अब अगर ऐसे लुकमा देने वाले की बात इमाम साहब ने मान ली और वो भी रुको छोड़कर वापसी दुआए कुनूत की तरफ आ गए, तो एक ऐसे शख्स की बात नमाज के अंदर मानी जो अब नमाज में नहीं है,
जिसकी अपनी नमाज टूट गई,
जिसकी अपनी नमाज टूट गई, तो अब जो अपनी नमाज जिसकी टूट गई, इमाम ने ऐसे शख्स का लुकमा लिया तो इमाम की भी टूट गई, और इमाम के पीछे जितने भी मुक्तदी हैं 20, 25, 50 उन सब की भी नमाज टूट गई। तो इसलिए लुकमा देने वालों को भी चाहिए कि ये भी शरी मसाइल समझें, जाने, सीखें, ताकि किस मौके पे लुकमा देना चाहिए और किस मौके पे लुकमा नहीं देना चाहिए, ये मसाइल अगर मालूम होंगे तो इंशाल्लाह अपनी भी नमाज महफूज रहेगी और इमाम की नमाज और दीगर मुक्तदियों की नमाज भी महफूज रहेगी।
बेमहल से मुराद यानी वो जगह नहीं है, लुकमे का महल नहीं है, लुकमे की जगह नहीं है।
जी जी, लुकमे की जगह नहीं है, लुकमे का मौका नहीं है,
ठीक है,
इस मौके पे लुकमा देना जायज नहीं है।
और इसके अपने अकामात हैं और ये भी सीखने समझने चाहिए, बाद अवकात वाकई ही जरूरी होता है लुकमा देना, बल्कि पूरी जमात है तो सब लोगों में से वो लुकमा देना यानी इमाम को वो गलती बताना फ़र्ज़ हो जाता है। अब आयत ही कि किसी जगह गलत हो जाए और आयत में गलती ऐसे वाक़े हो कि जिसमें बिलखसूस फसादे माना है और नमाज ही लोगों की टूटने की तरफ जा रही है, तो अब ये नहीं देखेंगे कि भाई मौज़िन ने नहीं दिया या मौज़िन की ही जिम्मेदारी है, इमाम के जो पीछे खड़ा है उसकी जिम्मेदारी है, दाईं जानिब है, बाईं जानिब है, तीसरी चौथी सफ से भी दे सकते हैं।
बिल्कुल, लुकमा देने के लिए मौज़िन साहब ही फिक्स नहीं है,
ठीक,
जो भी नमाज के बुनियादी ज़रूरी मसाइल जानता है वो मुसलमान भी इमाम साहब को लुकमा दे सकता है, बस वो मौका लुकमा देने का होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर तरावी में इमाम साहब कोई आयत अगर बीच में रह जाती है, तो अब जो सामे है उसके लिए बात जायज़ है कि वो लुकमा दे सकता है, क्योंकि अगर वो लुकमा नहीं देगा तो हो सकते हैं इमाम साहब भूल जाएँ और यूँ मुकम्मल कुरान शरीफ तरावी के अंदर ख़त्म ना हो, एक आयत रह गई, एक रुकू रह गया।
हाँ, तरावी में तो बतौर खास इस चीज़ का कुछ इंतज़ार भी करना चाहिए कि जो सामे एक मुकर्रर है, ताकि मस्जिद के अंदर भी कोई किसी तरह की बदमजगी ना हो और जो सामे है वो लुकमा दे। लेकिन उससे भी अगर साहब और निशान भूल वाली सूरत हो रही है तो कोई
हाँ, तो फिर कोई भी मुसलमान जिसको वो आयत करीमा अगर याद है, जो उमूमी तौर पर सूरह यासीन शरीफ एक बड़ी तादाद को याद होती है,
सूरह यासीन शरीफ का तो या दीगर कैसा होता है कि बेचारे हाफिज भी जो है ना वो भूल गए होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पहली सफ में भी सारे तकड़े लोग खड़े हैं, कुछ और भी ऐसे हैं, इसी तरह सूरह मुल्क कई और सूरतें हैं, आम नमाजों में भी ऐसा होता है, बाद सूरतें अगर मारूफ सूरतें पढ़ें तो इसलिए आइम्मा की एक तादाद होती है कि वो आखिरी 10 सूरतें या ये सूरतें वो नमाजों में पढ़ते ही नहीं है, वो पढ़ते ही वहाँ से कि हर एक को वहाँ से याद नहीं होता। मुझे एक इमाम साहब ने बताया, बोले जब भी आयतुल कुर्सी नमाज में पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, जब आयतुल कुर्सी नमाज में पढ़ता हूँ,
तो मैं भूल,
हालांकि अकेले में बच्चे बच्चे को याद होते
हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, खुद भी हर नमाज के बाद, हर नमाज के बाद पढ़ी जाती है, लेकिन बोले जब नमाज में पढ़ी जाए, पढ़ता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, कुरान की आयत है आयतुल कुर्सी, और आप ये पढ़ें या इससे ऊपर एक आयत है वो पढ़ लें या नीचे साथ शामिल कर लें, और वैसे भी किसी ने सिर्फ आयतुल कुर्सी ही तिलावत जो कर रहा है तो कोई मजायका तो नहीं,
कोई मजायका नहीं,
कोई मजायका नहीं,
कुरान पाक की आयत है और ये बहुत फजीलत वाली आयत,
बहुत फजीलत वाली है,
तो इस बिना पे कुरान पाक में अगर इसको पढ़ा जाता है तो कोई हरज नहीं है, इसको पढ़ते रहना चाहिए ताकि इमाम साहब का जो खौफ है वो खौफ दूर हो जाए,
खौफ दूर हो जाए। मैंने उनको कहा कि आप ये तसव्वुर कर लिया करो कि मुझे ही आती है, किसी और को नहीं आती है, इस वक्त तो ये मुझे ही आती है और आप पढ़ें और फिर कोई प्रैक्टिस भी करते रहे, तो बाद वक्त होता है ये एक प्रेशर होता है, चीज़ें याद होती हैं, सूरह मुल्क कईयों को याद है लेकिन जब मुसल्ले पर आते हैं तो आधी चीज़ें वो याद रहती हैं, आधी चीज़ें याद भूल जाते हैं। तो हम आम भी नमाजों में बहरहाल अपनी रूटीन बनाएं, बदल बदल कर सूरतें भी पढ़ते रहें तो इंशाल्लाह इससे नमाज में ज़ौक भी पैदा होगा, और जब बदल बदल कर पढ़ेंगे तो नमाज के अंदर दिल भी लगा रहेगा। और कई लोग ऐसे हैं जिनको रकातें भूल जाती हैं, तो जब सूरतों में ये फ़र्क रखेंगे तो इससे रकातों का भी एक तहफ़ रहेगा, वो भूलने से बच जाएंगे। जी मजीद सवाल।
मेरा ये मुझे सबसे सवाल है, क्या औरतें रोज़े रसूल पे हाजिरी के लिए जा सकती हैं?
ठीक जी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की हाजिरी ये करीब वाजिब है, और इसमें मर्द या औरत इनका कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह मर्द हजरात बारगाह रिसालत में हाजिरी का ये शरफ हासिल करेंगे, इसी तरह ख़वातीन के लिए भी बारगाह रिसालत रोज़े अतहर की हाजिरी का कसद करना, इरादा करना और सफ़र करना उनके लिए भी ये बिल्कुल बिलाशुबा जायज़ अमल है। अब यह अलग बात है कि जहाँ हाजिरी ख़वातीन की मस्जिद नबी शरीफ में इस वक्त जो हो रही होती है वो जिस कदर मज़ारे पुर अनवार रोज़े अतहर के करीब जा सकती हैं वहाँ तक उनकी हाजिरी हो रही होती है। अलबत्ता सुनहरी जालियों के सामने जो मर्द हजरात हैं इस वक्त जो वहाँ का मामला है, मर्द हजरात ही वहाँ पे हाजिरी मुआजा शरीफ जिसको कहा जाता है, तो वहाँ पर मर्द हजरात ही बाकायदा बिलफेल वो हाजिरी दे रहे होते हैं, लेकिन ख़वातीन भी गुम्बद खजरा के सामने जो मुआजा शरीफ का हिस्सा है वहाँ पर खड़े होकर वो भी सलात व सलाम बारगह रिसालत में अर्ज़ कर सकती हैं।
इस तरह औरतों के लिए पीछे से भी जो जगह होती है कि जो ख़ास तौर पर सब्ज जालियों के पास क्या कहेंगे पुश्त मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक की तरफ, तो वो जो सब्ज जालियाँ हैं तो उसके कुर्ब तक पीछे से भी उनको पहुँचने का
वही एरिया ख़वातीन के लिए इस वक्त जो है वो शेड्यूल के मुताबिक वहाँ तक ही उनकी हाज़िरी होती है, जहाँ असहाबे सुफा का चबूतरा भी है और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो हुजरा मुबारक, गालिबन वो जो सब्ज़ जालियाँ आप कह रहे हैं
जी
वो हुजरा मुबारक खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, तो वो उसी के आगे की जानिब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर है जो सब्ज़ गुम्बद शरीफ के बिल्कुल एन नीचे जो हुजरा आयशा तो सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है उसमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़से नफीस जलवा फरमा है, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू में जो मज़ार है वो हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, और एक मज़ार और भी इस हुजरे मुबारक में बनेगा और वो हज़रत सैयदना हज़रत ईसा आला नबीजना वाली सलाम का होगा जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाएँगे, और जब आप अपनी उम्र मुकम्मल फरमाएँगे तो आपकी तदफीन रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस हुजरे में एक जगह बाकी है वहाँ पर आपकी तदफीन होगी।
कुर्बे क़यामत का जो वाक़या खुद ही रिवायत में जो बयान
जी जी जी।
अच्छा, यहाँ एक बात की तरफ जमील साहब, औरतें हाज़िरी ज़रूर दें, ये यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की हाज़िरी करीब वाजिब जिसे हुक्म फरमाया गया, लेकिन उलमा यहाँ कितनी ताकीद करते हैं कि आदाब का ख्याल रखना, एहतराम आदाब, आवाज़ें पस्त रखना। यहाँ मस्जिद नबी शरीफ में जो उस वक्त हाजिर हों, मर्द भी जो अपने जगहों पर हैं, क्योंकि औरतों का अलग है मर्दों का, ज़ाहिर है जब औरतों की हाजिरी का टाइम होता है तो वहाँ से मर्दों को खाली कर लिया जाता है और वो औरतें आकर आगे करीब आती, लेकिन एक अजीब किस्म का मतलब एक शोरगुल औरतों में भी बहुत ज़्यादा دھکم پیل، آگے سے پھر شور شرابہ، تو ان چیزوں کے آداب کا خیال رکھنا کتنا اہم؟
بالکل، دیکھیں ایک عام محفل ہو، مجلس ہو، اس کے بھی آداب ہیں کہ شور نہ کیا جائے. پھر چونکہ یہ جو جگہ ہے یہ ایک مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ مسجدوں میں بھی اعلیٰ درجے کی مسجد، مسجد حرام کے بعد فضیلت میں مسجد نبوی شریف کا درجہ ہے. یہ مسجد نبوی شریف میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارکہ، اور اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار پر انوار. اب اس کے قرب میں پھر وہ خواتین کا ایک دم بھگدڑ مچنا. اچھا، یہی حال مردوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ جب
مواجہ شریف
مواجہ شریف میں حاضری کا ہو یا ریاض الجنہ میں حاضری کا بھی ہو، تو بعض وقت وہاں پہ بھی ایک دم بھگدڑ کہ پہلے میں چلے جاؤں، اس دوران ٹکراؤ، پھر اس میں کسی کا پاؤں کچلا جانا. خواتین میں یہ چیز کچھ زیادہ سننے کو ملتی ہے. مسجد نبوی شریف میں اور دیگر جگہوں پہ بھی اگر مسلمان مرد حضرات اگر عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور خواتین کا وہ اس وقت زیارت کا ٹائم ہوتا ہے، تو آوازیں بہرحال آتی ہیں جس میں بھگدڑ مچنا، چیخ پکار، اب اس میں آپس میں گفتگو. تو مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان سب پر لازم ہے کہ مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھیں، اور مسجد کے آداب میں یہ بھی ضروری ہے کہ کسی قسم کا شور نہ ہو. حتیٰ کہ اگر مسجد میں کوئی چیز رکھنی ہو تو اس کو اوپر سے نہ چھوڑیں، جیسے اگر کوئی آسا یا چھڑی جس کے پاس ہے تو وہ اوپر سے نہ چھوڑیں. خواتین اکثر اپنے ساتھ بیگ لے کے جاتی ہیں، تو وہ بیگ اوپر سے ہی نہ چھوڑ دیں کہ اس کے زمین پہ آنے کی دھمک محسوس ہو. چلنے کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھیں، چاہے مسجد نبوی شریف ہو، مسجد حرام ہو، یا عام جو ہماری مساجد ہیں، اس میں بھی مرد حضرات کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوڑیں نہ لگائیں، بھگدڑ نہ لگائیں، بالکل سلیقے سے، وقار سے، سکون اور اطمینان کے ساتھ ہمیں مسجد کے اندر چلنا ہے. اور یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعظیم اور آپ کے ادب میں اس بات کو شامل کیا گیا ہے کہ کسی قسم کی آواز بھی بلند نہ کریں. حتیٰ کہ جو صلاۃ والسلام پڑھنے کا موقع ہو تو وہاں پہ بھی آپ ایک کیف و سرور ہوتا ہے، کہ اس میں بھی جو حاضری دے رہے ہوتے ہیں وہ
اپنی بینی بینی آپ انداز میں
آواز میں کہ اپنے کانوں تک آواز جائے، بلکہ بعضوں سے تو سمجھو آواز بھی نہیں نکل رہی ہوتی، بس وہ
سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ دلوں کے حال بھی اتنا کیا کم کرم ہے کہ آپ وہاں پہنچ گئے. تو اب آپ کچھ ہی فاصلے پر ہیں، میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، ماؤں سے کہوں گا، بوڑھی خواتین بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، تو ایک دوسرے کے آگے بڑھنے میں اس طرح کے کئی معاملات ہوتے ہیں کہ جو بے ادبی کے زمرے میں آ جاتی، جس میں شور شرابہ پیدا ہوتا، تو ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے، جتنا آپ آگے پہنچی، آپ یہ کم شرف ہے کہ آپ اس مسجد کے اندر اور پھر خاص قربے مزار پر انوار کے بالکل پاس ہیں، اس قرب میں اور رحمتوں کے دریا میں گویا کہ ہیں، تو آپ اس وقت وہیں اپنے جو بھی نفل پڑھنے ہیں اگر مکروہ وقت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے تسبیحات جو بھی آپ کچھ اس طرح کے پڑھنا ہے تو آپ وہ پڑھیے، درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ پیش کر دیں. تو ان چیزوں کا بہرحال یہ ہماری بہنوں کو بھی خیال رکھنا ہے، بھائیوں کو بھی خیال رکھنا ہے. مواجہ شریف کی طرف جا رہے ہیں تو اب پتہ نہیں یہ کیا مطلب، ہر ایک انسان وہاں پر تقریباً کہیں کہ اکثریت کی، جمیل صاحب، تو موبائل ہاتھ میں اوپر یوں ہوتا ہے. میں یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، مواجہ شریف پر جا رہے ہیں اور پھر آپ مقدس مقام پر، کئی لوگ ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، وہ یہاں پہ ویڈیو کال کے ذریعے خود وہ مواجہ شریف کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت تو آپ کے پاس آپ کا کوئی دوست یہ وہ سب بھول جائیں میرے بھائی، آپ اپنی ایک مجرم کی حیثیت سے جا رہے ہیں، اور مجرم جب بارگاہ میں جا رہا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، کیا اس کی حالت ہونی چاہیے اس وقت؟ تو آپس کی گفتگو بھی نہ ہو، آپس میں بھلے آپ کوئی دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہیں، لیکن آپ وہاں ایک غلام اور مجرم کی حیثیت سے جا رہے ہیں. اس وقت آپ یہ نہ کریں کہ دیگر چیزوں کے اندر مشغول ہو جائیں. علماء نے لکھا ہے یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف، اس کی بھی ایک اپنی ظاہر خوبصورت اور اس کی تزئین ہے، और खूबसूरत से पिलर हैं, खूबसूरत लाइटें हैं, खूबसूरत छतें हैं, सब कुछ खूबसूरत है, लेकिन फरमाया कि जब हाजिरी के लिए जाएं तो उस वक्त उसकी खूबसूरती की तरफ भी तवज्जो ना करें, तवज्जो सिर्फ बारगाह रिसालत की तरफ। जब जा रहे हैं तो आप तवज्जो कि मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मुजरिम की हैसियत से मैं हाजिर हो रहा हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं कि उस वक्त अपने मोबाइलों पर अपने घर वालों को वीडियो कॉल पर लेते हैं, कुछ वैसे वीडियो बना रहे होते हैं, कुछ लाइव कर रहे होते हैं, और बाज़ वो लोग जो वीडियो कॉल के जरिए घर वालों की बात करा रहे होते हैं, और बात क्या मतलब उनको दिखा रहे होते हैं, खुद बातें भी कर रहे होते हैं, अजीब मंजर होता है। और इसमें एक और कितनी बेपर्दगी वाला मामला कि आप अपने घर से अपनी वालदा, बहन, बीवी, किसी से भी आप बात कर रहे हैं, आपने मोबाइल यूं किया हुआ है, ठीक है, कि वो ये मंजर देख ले और उनको सब लोग देख रहे हैं, यानी उन खवातीन को आप वीडियो पे, आपको पता है स्क्रीन पर
मतलब ये नजर जिस तरह इस आदमी की तवज्जो नहीं है,
हाँ,
तो इस तरह जो दीगर लोग भी हैं वो भी हाजिर, वो भी अपने दिल की हाजिरी भी नहीं दे रहे ना, जिस्म तो हाजिर हो रहा है,
लेकिन ये कितनी बड़ी गलती कि जब आप वीडियो कॉल के जरिए आप अपने घर वालों से और उनकी लेडीज को आप कैमरे पे ऑन किया हुआ है, आपने उधर से कैमरा म्यूट भी नहीं, कुछ है भी नहीं,
कैमरे में भी उनकी स्क्रीन बड़े
बड़ी होगी,
तो इस तरह तवज्जो नहीं दे रहे होते, फिर स्पीकर खुला हुआ है,
तो इस तरह की चीज, अच्छा बोलने नहीं भी है लेकिन उनकी तस्वीर कई ऐसे है, वो लोग कहते हैं हमें कि इस पे बातचीत की जाए, लोगों को ये चीज़ समझाई जाए, जो हसास होते हैं तो यार हम कहाँ आकर ये एक बेपर्दगी वाला ये मामला भी हो रहता है। और फिर वीडियो बनाने वाले वो ये नहीं देखेंगे जब बाहर आएंगे, एक वीडियो कहीं भी उन्हें बनानी है, आपको मंजर चल ठीक है आप किसी जगह की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ का तो ख्याल करें कि आप दीगर खवातीन को अपने वीडियो में तो ना लें, आप ऐसी जगहों का तो ख्याल करें। अब एहराम में आप हैं और आपने कहा मैंने वीडियो बनानी यहाँ की, तो एहराम में तो औरतों को वैसे ही चेहरा औरतों ने खोलना है, एहराम में औरतें चेहरा छुपाती नहीं, उनको मुमानत है इसके, तो जब उनके भी चेहरे वाजे हैं और आप सब की दिगर की आप ये वीडियो इस तरह बना रहे हैं, इन चीज़ों का ख्याल, हम मुतलकन आपको वीडियो से मना नहीं कर रहे, अगर आप अपनी तस्वीर बना रहे हैं या कुछ ऐसा बना रहे हैं कि जिसके अंदर कोई ऐसा पहलू नहीं है जो हम अर्ज कर रहे हैं, उस मौके पर ठीक है आप बना रहे हैं, आदाब का ख्याल जरूर रखें, लेकिन जब मवाजे शरीफ में बतौर खास जा रहे हैं तो ये जिस गलती की तरफ ये निशानदेही की है इस पर जरूर ख्याल रखें कि आपने वहां पे अपनी मोबाइल को ना चलाना है, इस्तेमाल करना, ना वीडियो बनानी है, बस एक मुजरिम की हैसियत से एक बार हाजिरी हो, 10 बार हो, भले 100 बार हाजिरी, वहां आप इसी अंदाज से जाइए और बारगाह रिसालत में हाजिरी दीजिए, और बतौर खास वीडियो कॉल के जरिए, और वो भी खवातीन को जब आप वीडियो कॉल पे लेते हैं तो आप हरगिज इस तरह कैमरा अपना ऊंचा ना करें कि पीछे से जितने लोग हैं वो मोबाइल पर आपके घर की खवातीन को वो देखते हुए जा रहे हैं, और आपको भी नहीं पता क्योंकि आपने तो कैमरा ऐसे किया हुआ है, आपको क्या पता कि कौन कैमरे पे आपके आ रहा है, तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाए और हमें उस बारगाह की हाजिरी भी बाअदब हाजिरी नसीब हो जाए, आमीन। जी मजीद सवाल।
मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि कुर्बानी के हवाले से जो हिस्सा हम लोग डालते हैं, मैं क्या सबके पैसे बराबर होना जरूरी है या कोई कम ज्यादा भी कर सकता है?
जी पैसे
देखिए इसके अंदर अगर इज्तिमाई कुर्बानी का ये सिलसिला है तो फिर इसके अंदर रकम का बराबर होना ही जरूरी है ताकि किसी की भी रकम की कमी बेशी की वजह से दूसरों को एतराजात का मौका मिलेगा। अलबत्ता ये अलग बात है कि आप ने अपना पर्सनल एक जानवर बड़ा लेकर आए और उसमें कोई आदमी कहता है कि मुझे भी आप एक हिस्सेदार बना लें,
ठीक,
तो अब आपने मिसाल के तौर पे 70,000 रुपये का एक बड़ा जानवर लेकर आए हैं और एक हिस्से की वैल्यू उसमें 10,000 रुपये बनती है। अब किसी आदमी को उस अपने इस जानवर में एक हिस्से में अगर आप शामिल करना चाहें तो आप उसको 5,000 रुपये में भी एक हिस्सा
दे
कर सकते हैं,
ठीक,
यानी अपना जाती बड़ा जानवर है तो उसमें आप भले 10,000 के बजाय 9,000 में भी आप उसको पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन जब इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला होगा तो वहाँ पे हर आदमी की जो रकम हो वो बराबर होनी चाहिए ताकि किसी भी आदमी के साथ ये कमी बेशी का मामला, ये दीगर लोगों के हकूक पर एक तरह की जद इससे वाक़ ना हो और इससे लोगों को एतराज़ात के मौके भी मिलेंगे। फिर चूँकि ये सब की तरफ से आप वकील होंगे इज्तिमाई कुर्बानी का जानवर ख़रीदने की सूरत में, तो फिर हर एक के जितने रकम लगेगी ख़रीदारी में तो वो उतने ही हिस्से का फिर मालिक होगा, और अगर रकम कम होगी तो फिर इस जानवर के अंदर सातवें हिस्से से कम उसकी मिल्कियत होगी,
फिर मसाइल हो सकते
फिर
हैं।
मसाइल इज्तिमाई कुर्बानी में हो सकता है, किसी की भी कुर्बानी ना हो, ऐसे मसाइल भी आ सकते हैं।
घरेलू फैमिली के अंदर कुछ इस तरह की गुंजाइश है
जी, उसके अंदर कोई मजायका नहीं है कि उसके अंदर हम ये रियायत कर सकते हैं कि यहाँ तक यूँ भी हो सकता है कि बड़े जानवर में किसी को कहा कि एक हिस्सा हम आपका इसमें शामिल करते हैं, वो भी कहता ठीक है मेरी तरफ से आप एक हिस्सा शामिल कर ले,
पैसे ना भी ले,
पैसे नहीं ले रहे,
ठीक है ठीक,
तो यूँ भी हो सकता है।
ठीक है, बहरहाल इस तरह के जो भी है तो उसमें जो इज्तिमाई कुर्बानी है उसके हवाले से बतौर ख़ास इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना, क्योंकि उसमें हम वकील हैं, हम अपनी तरफ से यूँ तसरुफात नहीं कर सकते। सवाल है आज़ाद कश्मीर से, कहते हैं कि मेरे सवाल, इन्होंने कहा है कि फजर की नमाज मेरी कज़ा हो जाती है, तो इसमें कज़ा पड़ी जा सकती है, क्या करना चाहिए?
फजर की नमाज कज़ा होने का माना यह है कि फजर की नमाज का वक्त ख़त्म हो गया, यानी सूरज तुलू होकर निकल आ चुका है, तो ये फजर की नमाज कज़ा हो गई। तो अब फजर का वक्त ख़त्म होने यानी सूरज तुलू होने के बाद से 20 मिनट मज़ीद, ये वक्त अब होता है मकरू औकात में से एक पहला वक्त है। इस वक्त के अंदर कोई नफिल, कोई फ़र्ज, कोई कज़ा ये नमाज़ें नहीं पढ़ सकते। तो अब इस सूरत में ये 20 मिनट का दौरानिया गुजरने के बाद अब फजर की नमाज को कज़ा किया जाएगा, इसके अंदर सुन्नत फजर भी पढ़ें और फजर के फ़र्ज भी अदा करें। और ये जो फजर की नमाज का कज़ा हो जाना है, ये अगर मामूल में शामिल हो रहा है तो इसका माना यह है कि सोने वाला वो नमाज का एहतिमाम करके नहीं सो रहा, या जैसा एहतिमाम होना चाहिए उस एहतिमाम की तरफ कुछ गफलत कोताही पाई जा रही है, तो इस तरह कसदन नमाज कज़ा करने की सूरत पाई जा रही है और ये गुनाह का अमल है। इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्ची तोबा करनी है और फजर की नमाज के लिए एहतिमाम करना है। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि अलार्म सिर्फ एक ना लगाएं, एक से जायद मोबाइल के अंदर तो ऑप्शन होते हैं, आप जितने चाहें अलार्म सेट कर सकते हैं, तो नमाज से आधे घंटे या मुनासिब वक्त पे आप जमात से पहले का अलार्म लगा लें। यूँ भी मुमकिन है कि अपने मोबाइल की रिंगटोन ऑन रखें और इमाम साहब से, मौजिन साहब से
किसी से कह दें कि फ़ोन कर,
आप तय कर लें कि इस टाइम आप मुझे नमाज के लिए उठा दिया करें, तो इससे इंशाल्लाह नमाजें कज़ा नहीं होंगी।
बाद तो ये मोबाइल वाले अलार्म किसी के लिए कोई माना नहीं रखते, यानी उनको इनसे जितनी भी बड़ी आवाज़ हो तो आप फिर थोड़ा सा कोई अच्छा वाला, वो पुराने भी स्टाइल के जो अलार्म होते हैं ना,
वो
घड़ियाल टाइप के जिसके ऊपर भी वो घंटी नुमा जिस वो बाकायदा बजते हैं, तो उससे कोई उम्मीद है, घर में इतने अफराद होते हैं कोई ना कोई तो जाग ही जाएगा, तो ये एहतमाम करना चाहिए। अगर हमारी किसी की फ़्लाइट उस वक्त हो और ट्रेन हो या कोई और टिकट हो या पैसे जहाँ पे ज़ाया होने का कोई अंदेशा है, या बच्चों की वैन ही अगर उस टाइम आती है और उससे पहले हम कितने अहतमाम करते हैं, पता है वैन चलेगी तो बच्चे को अब खुद छोड़ने जाना पड़ेगा, तो इसलिए जब दुनियावी अपने मामलात के लिए ख्याल रखते हैं तो मोहतरम नाज़रीन इकराम नमाज सबसे बढ़कर अहमियत वाली है, तो इसके लिए ज़रूर इस तरह का हमें एहतमाम करना है। अपने घरों में ऐसा माहौल हो कि अगर दूसरे आकर उठाएं भी तो कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़े वाला कतन ये मामला नहीं होना चाहिए, और इंशाल्लाह जब नीयत पक्की होगी तो नमाज, क्योंकि एक नमाज भी जानबूझकर कसदन छोड़ देने वाला, कज़ा कर देने वाला शख्स, वो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, और उस दरवाजे पर जिससे वो दाखिल होगा जब तक वो तौबा नहीं करता, उस नमाज की कज़ा नहीं कर लेता, इन तौबा का तकाजा यही है कि अपनी उन नमाज को वो पढ़ ले, तो इन चीज़ों का बहरहाल एहतमाम रखना चाहिए।
मैं एक चीज़ ये भी कि जल्दी सोना भी फजर की नमाज में उठने में मददगार साबित होता है। अब रात एक एक दो दो बजे तक अगर जागते रहेंगे और अब फजर की उम्मीद रखेंगे तो मेरे ख्याल में मोबाइल में या वैसे ही जितने अलार्म लगा लें तो बस अलार्म बज बज के वो खामोश हो जाएंगे, लेकिन इसकी हो सकता है कि ज़रा सी भी नींद में कोई फ़र्क ना आए, तो इसलिए जल्दी सोना भी फजर की नमाज में उठने के लिए एक मददगार सूरत है। अब इसके लिए 11 बजे सो जाएं, कम से कम 12 बजे सो जाएं ताकि फजर के अंदर उठना आसान रहे।
अच्छा एक सवाल है, बड़ा मतलब अजीब लगा मुझे, कहते हैं कि क्या थोड़े से सूद पे तो कर्ज लिया जा सकता है, यानी ये कह रहे हैं कि सूद ज़्यादा देना पड़े तो सूद सूद है, लेकिन कोई बिल्कुल माइनस सा सूद है, थोड़ा सा सूद देना पड़ रहा है, क्या उस पर भी लिया जा सकता है?
लेकिन सूद ये अल्लाह तबारक व ताला सूद का जो लेन देन का अमल है ये अल्लाह तबारक व ताला से, अल्लाह के रसूल से एक तरह का ऐलान जंग कबूल करने वाली बात है। तो अब वो चाहे 1 रुपए का सूद हो या 1000 रुपए का सूद हो, किसी भी मुसलमान के लिए सूद का 1 पैसा भी हराम है। तो इसलिए ये ना कहें कि थोड़ा बहुत तो चलता है, तो थोड़ा बहुत भी नहीं चलता। ना ज़्यादा सूद रवा है ना कम, 1 पैसा भी सूद का लेना हराम है और इसकी सख्त ممانعت ہے اور احادیث کریمہ میں اس کے سخت عذابات بیان فرمائے گئے ہیں۔ سود کے لینے والے، دینے والے، سود کو لکھنے والے، سودی معاہدے لکھنے والے اور اس معاہدے پہ گواہ بننے والے، ان سب پر لعنت فرمائی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو سود کی لعنت سے، سود کے کام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
جی مزید سوال۔
میں جب دعا قنوت بھول جائیں امام صاحب، تو یہ معلومات کرنا تھا لقموں کیوں نہ دیں ان کو، اگر نہیں دیں گے تو ان کو کیا پتہ چلے گا میں نے غلطی کی ہے؟
ان کو لقمہ کیوں دیں گے نہیں پتہ، کیا کیا کہیں گے یار، ان کو پتہ کیسے چلے گا میں نے غلطی کی ہے؟
دیکھیں، ان کو وتر پڑھنے کی صورت میں بعض اماموں کو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، کیونکہ جب امام صاحب چلے گئے رکوع میں، کچھ مقتدی کھڑے ہیں، تو یہ کہ کچھ نہ کچھ امام کو دائیں بائیں کا کچھ نہ کچھ حال پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی کھڑا ہوا ہے تو کوئی رکوع میں ہے، تو امام کو آئیڈیا تو ہو جاتا ہے کہ کچھ ہوا ہے،
غلطی ہوتے ہی ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح۔
اب وہ، اب جو جس کو شرعی حکم پتہ ہے وہ تو واپسی آئے گا نہیں، تو اب اس کو پتہ ہے کہ اب مجھ پہ سجدہ سہو ہو گیا واجب، اور یہ سجدہ سہو ہونے سے نماز بالکل درست ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے مقتدی حضرات کو بھی ٹینشن فری رہنا چاہیے، امام بالکل ٹینشن فری ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب سجدہ سہو کر لوں گا اور نماز کا یہ ترک واجب سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ تو مقتدی حضرات کو بھی اب امام کے پیچھے پیچھے، جو آپ نیت کرتے ہیں نا کہ پیچھے اس امام کے، تو یہ بھی موقع ہوتا ہے پیچھے اس امام کے، اس پہ عمل کرنے کا۔ یعنی امام صاحب اگر دعائے قنوت بھول گئے، رکوع میں چلے گئے، تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ رکوع میں چلے جائیں۔ یعنی کچھ مواقع ایسے ہیں نماز میں کہ اگر امام صاحب وہ کام نہ کریں تو مقتدیوں کو بھی اب وہ کام نہیں کرنا ہوتا، تو ان میں سے ایک کام یہ ہے۔ البتہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر امام صاحب نہ کریں تو مقتدیوں کو وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ اگر قعدہ التحیات میں بیٹھنا ہے، امام صاحب التحیات پڑھ چکے ہیں اور وہ ابھی مقتدی کی ادھوری ہوئی ہے، تو مقتدی پوری کر کے پھر التحیات مکمل کر کے پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا۔ تو بہرحال ہمیں امام کے پیچھے پیچھے نماز کی ادائیگی کرنی ہے، اور نماز کے مسائل بنیادی طور پہ اگر سیکھیں گے تو سیکھنے سے بہت سارے احکامات بھی ہمیں معلوم ہوں گے کہ کن کن معاملات میں امام سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور کن معاملات میں ہم امام کی غلطی میں ساتھ نہیں دیں گے۔ مثلا امام صاحب اگر چوتھی رکعت کے قعدہ کرنے کے بعد پانچویں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اب مقتدیوں کو حکم یہ بیٹھے رہیں،
اب نہ مانیں،
ٹھیک ہے، اب نہیں مانیں گے، اچھا اسی طرح چوتھی رکعت میں بیٹھنا تھا، امام صاحب بیٹھنے کے بجائے وہ پانچویں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پہ مقتدی امام صاحب کو لقمہ دیں گے،
ٹھیک،
بھلے امام صاحب کھڑے ہو گئے پانچویں رکعت کے لیے ان کو لقمہ دیں گے، بھلے امام صاحب پانچویں رکعت کے رکو میں چلے گئے ان کو لقمہ دیں گے اور ان کو التحیات کی طرف لائیں گے۔
صحیح۔
تو کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پہ مقتدی امام کی بات نہیں مانیں گے، بیٹھے رہیں گے۔ اب امام صاحب اگر نہیں آتے تو وہ ان کا میٹر ہے، مقتدی حضرات التحیات مکمل کر کے نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔
مطلب امام پانچویں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں،
مقتدی
دعا ہی نہیں، پھر وہ پانچویں کا بھی سجدہ کر رہے ہیں امام، تو وہ مقتدی اپنا سلام پھیر کے،
مقتدی اپنا سلام پھیر لے،
ہوگی نماز ان کے
مقتدیوں کی ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا کس طرح کا ہوا کرتا تھا؟ چند چیزیں ایسی بتائیے جو حضور علیہ السلام کو بہت پسند تھی۔
جی، مدنی چینل پر ایک سلسلہ بھی پیش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک غذائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانے میں پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ، آپ کی کتاب ہے پیٹ کا کفل مدینہ، تو اس کتاب میں بھی بہت سی ایسی چیزیں اور معلومات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیزیں کھانے میں کیسے پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ کیا کہیں گے کچھ مختصرا ایک دو چیزیں؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی شریف ये भी पसंद था, बल्कि इसको तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो खाने का बर्तन था उसमें तलाश कर रहे
तलाश
थे।
फरमाएगा था।
तो हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला उन्होंने जब ये मंज़र देखा तो आपने भी इस बात को अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि आपके हर खाने में लौकी के पीस हुआ करते थे, कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लौकी तलाश करना ये पसंद की एक अलामत है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बकरी के गोश्त में जो उसके बाजू वाला जो गोश्त
दस्ती
होता, जिसको हम दस्ती का गोश्त कहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बकरी के गोश्त में दस्ती का गोश्त ये पसंद था, और ये भुना हुआ जो गोश्त है तो ये आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे। खजूर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम मामूलात में खाने गिज़ा के अंदर शामिल है। ककड़ी भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से खाना साबित है।
ठीक है, कई चीज़ें ये खानी और कई हालतें ऐसी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की हालत में भी रहा करते थे। ये कैफियत भी एक मरतबा घर से बाहर तशरीफ़ लाए सैयदना अबू बकर व उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, दरियाफ़्त किया, तो आपने इनसे पूछा कि तुम कैसे आए, तो कहें हमें भूख की वजह से हम घर से बाहर आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही सबब बयान फरमाया। और आप कई मरतबा इस तरह यानी रोज़ों के भी आपके इतने मामूलात हैं कि जिसमें खजूर और दूध या पानी पर यही सहर है, यही इफ्तार है, यानी ये भी बकसरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस तरह के जो मामलाते हैं ये आपके इख्तियारी हैं, ये आपके इख्तियारी हैं। आपके खानों में डिशेस उस तरह नहीं होती थी कि दस्तरखान में मुख्तलिफ अनवा के हर वक्त ही खाने ऐसे भरे हों, ऐसे आपके आम मामूलात में से वो नहीं था। इस उम्मत के लिए, इस उम्मत के जो गरीब अफराद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कैफियत खुद इख्तियार की, वरना चाहें तो सोने के पहाड़ बनकर आपके साथ चलें अगर इशारा फरमा दें, अगर चाहें तो आप इशारा करें तो बारिश बरसती भी है, बारिश रुकती भी है, तो आप चाहें तो क्या कुछ ना हो सकता था। लेकिन ये चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इख्तियार फरमाई हैं ताकि उम्मत भी अपने इन मामलात में ख्वाहिशात पे कंट्रोल, या जिसके पास नहीं है तो वो कोई अपने आप को एहसास कमतरी में ना पड़े। तो इस तरह की चीज़ें बादों का सीरत की ये चीज़ भी कि एक एक महीना गुजर जाता था, अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अनहुम इनके घराने में चूल्हा रोशन नहीं हुआ करता, एक एक महीने का, ये भी एक तवील अरसा महीनी आप यूं भी गुजर जाता था। ये भी कैफियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, आपके अहले बैत की सीरत में मौजूद हैं। तो लिहाजा आज के इस दौर में हमें ये चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर समझनी चाहिए। अगर किसी चीज़ की कमी है तो ये नहीं कि बंदा फिर सूदी कर्जों की तरफ चले जाए, नाहक तरीके से माल के हुसूल की तरफ चले जाए, अपने खाने पीने पहनने या इन चीज़ों की ख्वाहिशात को तकमील करने के लिए वो फिर गलत रास्ते इख्तियार करे, तो ऐसा हरगिज़ हरगिज़ से नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक सीरत अपने सामने हमें रखनी चाहिए। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त तो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अल्लाह पाक हमें भी बार बार हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हादियों रहनुमा हमारे गुलामा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।